नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पिछली बार हमने बात की थी धर्म, अध्यात्म और मेडिटेशन के बारे में, और हमने ये भी जाना था कि मेडिटेशन कैसे खुद को सशक्त बनाता है। लेकिन अब बात आती है कि क्या यही मेडिटेशन हमारे समाज को सशक्त बना सकता है? क्या हम सभी एकजुट होकर के समाज का जो ढांचा है उसको सुधार नहीं सकते हैं? क्योंकि समय की मांग अब यही है, सब जगह भाईचारा, शांति और प्रेम सद्भावना का माहौल बन जाए। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारीज के रिलीजियस विंग, धार्मिक प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर आदरणीय रामनाथ भाई साहब। आपका एक बार फिर से इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है।
ओम शांति।
भाई साहब, पिछली बार हमने जो धर्म, अध्यात्म और मेडिटेशन के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की थी, और हमने ये भी जाना था कि मेडिटेशन जो है खुद को एक्सप्लोर करता है, हम अपने आप से जुड़ते हैं इससे। क्या सभी एकजुट हो करके इस मेडिटेशन को एज अ टूल, टेक्निक यूज करके क्या हम समाज का जो ढांचा है उसको सुधार सकते हैं?
आपने बहुत अच्छी बात बताई। देख लीजिए, आप एक दीपक जलता है
जी,
तो वो रोशनी देता है जरूर। ऐसे 100 अगर दीपक जलाओ तो कितनी रोशनी होंगी
जी।
इसलिए खास सवेरे 3:30 बजे रिकॉर्ड बजता है। सारे विश्व केंद्र जितने भी सेवा केंद्र है, ये नियम है, 4 से 5:45 बजे तक 45 मिनट मास मेडिटेशन, अकेले नहीं संगठित रूप में बैठकर आप मेडिटेशन करो, अपने आप को जागृत करो। जो सबके मन में एक जैसे पॉजिटिव विचार चल रहे हैं, तो एक जैसे पॉजिटिव मन और बुद्धि, ये दो, एक ही मन नहीं, एक मन चलता है बुद्धि के अंदर और कुछ चलेगा। तन भी शीतल हो, मन भी शीतल हो। मन प्रश्न करता है, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। ये दोनों अगर चलते हैं तो क्या होता है, मन भी शीतल, पॉजिटिव विचार कर रहा है तो उसको कहते हैं शीतल। डेड नहीं है, एक है डेड साइलेंट, एक है स्वीट साइलेंट, अच्छे विचार चलता है। और सभी के मन और बुद्धि में पॉजिटिव विचार चलते हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है
जी, बिल्कुल।
तो उसको कहते हैं योग बल। संगठित रूप में जो शक्ति होती है, जैसे हवन करते हैं, हवन के अंदर देखो सूखी लकड़ी डालते हैं, इस तरह गीली लकड़ी भी डालो वो भी जल जाती है। अगर ये संगठित रूप में जब मेडिटेशन करते हैं, किसी के मन में गलत विचार चलता है, किसी के अंदर कोई समस्या है, वो भी इसके अंदर परिवर्तन होंगी, उनको भी मदद मिलेंगी। तो संगठित रूप में मेडिटेशन करते हैं, उसके साथ और एक हम काम करते हैं कि आपने कहा समाज में बहुत प्रकार के हमारे भाई बहन हैं,
बिल्कुल,
तो इस एक समाज के अंदर 18 प्रकार के लोग हैं, तो उन 18 प्रकार के, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 18 विंग्स है, यूथ विंग है, महिला विंग है, साइंस एंड इंजीनियर्स है, ग्राम खेती काम करने वाले खेती में ग्राम विकास विद्या एक है, उसके अंदर धार्मिक है, पॉलिटिशियंस है, तो हर प्रकार के विंग है। उसके अंदर एक धार्मिक प्रभाग जो है वो क्या करता है कि सारे भारत के अंदर जितने भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, यहूदी, सभी धर्म वालों का हर साल एक दफा माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस रखते हैं, सभी धर्म वालों को इन्वाइट करते हैं
जी।
तो उनको इन्वाइट करते, एक स्टेज पर सभी धर्म वाले बैठेंगे। हम किसी को नहीं कहते आप अपना धर्म छोड़ दो, नहीं, आप अपने धर्म में रहो, आपके धर्म में जो शिक्षा दी है उसी के अनुसार आप चलो
जी।
कभी भी हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं कि सभी, देखो भारत के अंदर एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, ये दसी दोनों हाथ जोड़ते हैं, दसी अंगुलियां एक से एक जोड़ना चाहिए तब नमस्ते कहा, एक अंगुली से भी नहीं, दो अंगुली से नहीं, दसी चाहिए। जो सभी धर्म वाले एक मंच पर बैठे और सबके मन के अंदर एक विचार हो, हम एक खुदा के बंदे हैं, एक भगवान के बच्चे हैं
जी,
और एक स्टेज पर बैठ करके सबके मन में सारे समाज के लोगों को क्या करना है, सुख और शांति देनी है। तो पहले हमारे मन में शांति हो, हमारे जीवन में सुख हो, तो इसके लिए एक साथ में बैठ कर सब अच्छे विचार करते हैं, अच्छे मान्यताओं से बैठते हैं, तो उसी प्रकार के लोगों को धर्म का, शास्त्रों का, आध्यात्मिकता का ज्ञान देते हैं, तब लोगों को लगता है ये सब मिल करके है, अलग नहीं है। तो ये लक्ष्य रख करके हर साल हम माउंट आबू में सर्वधर्म सम्मेलन करते हैं, सभी धर्म वालों को बुलाते हैं और हम उनको कहते हैं आप आपकी जो जैसे मुस्लिम धर्म वाले आते हैं उनको वो कहते हैं 7 बजे हमको नमाज पढ़ना है
जी।
हाँ उनके लिए हम कहते हैं आपके लिए स्थान है,
बिल्कुल
आप अपना समय पर नमाज कीजिए, नहीं नहीं आप नमाज छोड़ दो इधर आने के बाद, नहीं
जी।
आप अपने धर्म समय अनुसार अपना नमाज पढ़िए,
नहीं तो ये धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचती है।
हम हर एक धर्म को सम्मान देते हैं तो हर एक धर्म मिल करके एक स्टेज पर बैठो, हम अलग नहीं है लेकिन मैं अकेला भी नहीं कर सकता, कोई एक धर्म सारे विश्व को शांति नहीं दे सकता,
बिल्कुल
सभी धर्म मिल करके। अभी सभी धर्म का लक्ष्य यही है, कोई भी धर्म किसी को ये नहीं सिखाता है गुस्सा करो,
बिल्कुल
कोई भी धर्म में नहीं कहा किसी की हिंसा करो,
बिल्कुल
किसी धर्म में कभी नहीं कहा कि किसी के लिए गलत सोचो, तब का सारे धर्मों के अंदर एक ही है औरों के प्रति शुभ सोचिए। ईश्वर एक है, हर हम आत्मा है, परमात्मा के संतान है, तो ये लक्ष्य कॉमन है, तो इसी लक्ष्य को लेकर सबकी ज्योत एक परमात्मा से जुड़ती है तो वो जो शक्ति प्राप्त होती है। सब लोग कहते हैं हमें अपना अपने इतने कॉन्फ्रेंस में अनुभव है, जो भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ज्ञान सरोवर करके एकेडमी है वहां जो आते हैं सब फीडबैक लिखते हैं, हर एक व्यक्ति ये 3 शब्द लिखता है, एक हमने सुना था कि धरती पर स्वर्ग आएगा
जी,
ये था हमने यहाँ आके स्वर्ग क्या है देखा, और एक कहते भगवान है सुना था लेकिन यहाँ भगवान कौन है किसको कहते वो समझ में आया, तीसरा कहते शांति चाहिए इच्छा थी लेकिन यहाँ आने के बाद शांति का अनुभव किया, ये ज्ञान सरोवर में आकर के कि मान सरोवर हो गया मन शांत हो गया, ये हर एक व्यक्ति फीडबैक में लिखता है, क्यों यह आध्यात्मिकता है, इतना ही मनुष्य को अभी तक पता नहीं, सब कुछ हम भौतिक राम राम जप करते रहे करो गलत नहीं लेकिन मन बुद्धि बुद्धि के अंदर और कुछ चल रहा है, तो ये भौतिक हमने पूजा पाठ किया करना चाहिए गलत नहीं है, वो प्राइमरी स्टेज चाहिए, उसके साथ आत्मा की भी एकाग्रता चाहिए।
जैसे आप ये बता रहे हैं तो मेरा एक प्रश्न मेरे जहन में है कि सभी जो जितने भी हमारे धार्मिक संगठन है सभी ये कहते हैं कि रास्ते सबके अलग अलग हैं लेकिन जाना सबको वहीं पर ही है,
बिल्कुल जाना एक जगह पर, रास्ते अलग अलग
जी,
लेकिन इसके साथ और एक शब्द ऐड करना चाहिए, अलग अलग रास्ते हैं लेकिन आप कैसे जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, तो जाने का मूड कैसा है, हाँ लेकिन कौन जा रहा है, शरीर तो नहीं जा रहा है
जी,
ये आत्मा की यात्रा है, ये मन बुद्धि की यात्रा है, शरीर की नहीं, मन बुद्धि के द्वारा कैसे जा रहे हो, तो मन के अंदर अभी कितना दिन क्या हो गया, मन के अंदर विचार कर सकते हैं बुद्धि, तो तब कहा पतंजलि के अंदर मन को कौन रोकता है, तो मन को ये बुद्धि रोकती है, बुद्धि के अंदर और दूसरे विचार आते हैं, तब कहा विधि बताया इसको कहते हैं कॉन्शियस ट्रेवल, ये शरीर की यात्रा नहीं
जी,
हाँ अमरनाथ यात्रा का शरीर, मन बुद्धि की यात्रा है, परमात्मा के साथ मन बुद्धि जोड़ना है, आत्मा को जोड़ना है, क्योंकि पतित आत्मा को पावन करना है, शरीर को निरोगी नहीं करना, वो डॉक्टर करेगा, तो ये अच्छी तरह से दो जानना चाहिए, इसलिए दो यात्रा जो शब्द कहा अलग अलग रास्ते होते हैं, किसी रास्ते पर चलो आप लेकिन जाने की विधि चाहिए, उदाहरण के लिए मेडिकल स्टोर में जाइए आप सिर दर्द की गोली मांगो वो देगा आपको, लेकिन उसके पर लिखा रहता है कि एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर को पूछ के लेना है
जी, जी,
क्यों
जी।
कि सिर दर्द की दवाई है, लेकिन सिर दर्द आपको किसके कारण हो रहा है, माइग्रेन के कारण हो रहा है, आंखों का नंबर चेंज हो गया चश्मे का, दवाई की जरूरत नहीं नंबर चेंज कीजिए, कोल्ड के कारण हो गया, पित्त के कारण हो गया, किसके कारण हुआ वो डायग्नोज करेगा, तब आपको दवाई ले सकते हो, लेकिन सिरदर्द की गोली सीधा नहीं ले सकते आप, तो यहाँ भी आप मेडिटेशन क्यों करना चाहते हो, भगवान को क्यों याद करना चाहते हो, वो जानना चाहिए, बच्चे आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करते हो तो मेरे शक्ति से आत्मा के पाप मिटेंगे, इसके लिए है पतित आत्मा को पावन करता है
जी।
पतित शरीर को नहीं, भगवान मेरे शरीर की बीमारी ठीक करो, तो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्वों में जो दवाई बनती है वही ठीक करेगा ना, तो ये 2 को अच्छी तरह से जानना चाहिए।
शायद यही कारण है जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या आरती करते हैं तो हमारा जब माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वही जो है नेगेटिव भावनाएं नेगेटिव फीलिंग दूसरों के लिए वो खत्म नहीं हो पाती है, यही कारण है इसका कि हम अपने आप को कुछ और ही समझते हैं, और जो आपने बताया कि आत्मा समझ करके हमको याद करना,
ध्यान करना जरूरी है। शरीर समझ करके अगर आप ध्यान करते हो तो शरीर का आवाज ऊपर नहीं जाता।
हाँ, बिल्कुल।
शरीर माना पांच तत्व से बना हुआ है, उसका आवाज हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो आत्मा समझते हो, आत्मा का आवाज परमात्मा के पास पहुंचता है।
ये एक्सपेरिमेंट करने की चीज हो गई एक तरह से।
और ये जानते हैं हम जो साधना करते हैं, मेडिटेशन क्यों कर रहे हो आप? शरीर की दर्द ठीक करने के लिए नहीं है
जी।
शरीर के दर्द है वो डॉक्टर करेगा, क्योंकि ये पांच तत्वों से बना हुआ है। तो पांच तत्वों का फिजिशियन है, वो दवाई देता है। बहुत दर्द हो रहा है तो वो पेन किलर देता है। अगर आप मेडिटेशन करने बैठो, पेन किलर या दवा, दर्द जाना चाहिए, लेकिन दर्द वहां ही है। सिर्फ आत्मा अपने को बिजी करने से मन बुद्धि उसका महसूस होता नहीं कर सकती है। इतना हो सकता है लेकिन वो खत्म नहीं होगा। उदाहरण के लिए कांटे का झाड़ है, अगर आप उसको एक कांटा काट दो तो छोड़ दो, गया, खत्म हो गया। नहीं, जैसे उसको पानी मिल गया फिर से आएगा, जड़ उसके है। तो ये शरीर की जो बीमारी का जड़, शरीर के अंदर बीमारी नहीं, आत्मा के अंदर है। वो शरीर के द्वारा प्रकट होती है। आत्मा के अंदर से मिटाते हो तो शरीर की बीमारी ठीक होती है। आजकल देखो हार्ट की बीमारी है तो ऑपरेशन करते हैं, कहते 5 साल की गारंटी, उसके बाद दोबारा होगा।
यस, क्या ये सम्मेलन करने के बाद प्रैक्टिकल में रिजल्ट कहीं पर आपको दिखाई दे?
हाँ, बहुत रिजल्ट दिखाई देता है। कितने धर्म वालों ने बुलाया अपने जैसे, देखो पंजाब में हम गए थे गुरुद्वारे में, उनके गुरु गद्दी पर
जी
बिठा के हमको 45 मिनट स्पीच करने दिया। और फिर उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी भाषा में, पंजाबी भाषा में भी उसको ट्रांसलेट किया। हमने कहा कहीं भी गुरु नानक देव जी ने कभी नहीं कहा गुस्सा करो
जी।
हमने कहा आप इतने बैठे हो, बताओ कि आप में से कोई एक दिन भी किसी ने गुस्सा नहीं किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति है तो बताओ। हाँ, कभी किसी धर्म वाले ने किसी को कहा दुख दे दो, हिंसा करो, कहीं भी नहीं कहा। तो पहला ये मानव धर्म है कि मैं जो आत्मा इस शरीर में आया हूं, मेरा धर्म क्या है? तब कहा वसुधैव कुटुंबकम्। हम एक खुदा के बन जाए, हम सब एक है। ये शरीर के रूप में एक नहीं, आपने अलग कपड़े पहना, मैंने अलग कपड़े पहने, आप जैसे चाहे कपड़े पहनो, जो चाहे भाषा यूज करो, पंजाबी में बोलिए आप, कर्नाटकी भाषा में बोलिए, मराठी भाषा में बोल दिए, बोलो, कोई अर्जा नहीं, ये भाषा है। लेकिन मैं कर्नाटक भाषा में बोलते हुए भी वही अर्थ है, पंजाबी भाषा में बोलते हुए वही अर्थ है, इंग्लिश में बोलते हुए अर्थ यही है। भाषा अलग अलग है लेकिन बात जो कह रहे हैं हम वो एक ही चीज है। तब कहते हैं हम दिल से एक है, दिल सबका एक ही है, तब का सबका दिल दिलाराम के साथ।
जी जी जी। लेकिन एक जहन में मेरे प्रश्न आ रहा है कि हर जितने भी हमारे धर्म है, सभी का एक धर्म पुस्तक भी बना हुआ है, बड़े महान उसमें प्रीचिंग्स दी हुई है,
बिल्कुल सही है,
इतनी महान बातें उसमें कही गई हैं कि हिंसा नहीं करनी है, सबसे प्रेम से बात करनी है। लेकिन आज हम देखते हैं पढ़कर के भी मेरे अंदर चेंज नहीं आ रही है।
कारण हम पढ़ते समय सिर्फ पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई किया एक ही शब्द पढ़ो। खाना क्यों खा रहे हैं? ताकत चाहिए। जो पढ़ाई किया तो उसको आचरण तक लाना।
हाँ, आचरण में नहीं लेकर आते हैं, भाई अंतर आ जाता है।
यस, हमने पाठ किया, गीता का एक श्लोक रोज पढ़ना है, एक आदत डाली है, ये पढ़ के वहां छोड़ दिया। जो आपने पढ़ा, अभी आप पूछेंगे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम भी क्या करते हैं, आप मुझे पूछेंगे, यहाँ मुरली कहते हैं, सवेरे सवेरे पाठ पढ़ाया जाता है। निराकार भगवान ने आकर शिव परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से जो पढ़ाई पढ़ाई, इसको कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो पढ़ाई है, रोज मैं मुरली सुनता हूँ, उसमें से एक महावाक्य लेता हूँ, नोट करके जेब में रखता हूँ। 500 महावाक्य सुनाते हैं, उसमें से एक ही लेता हूँ, भगवान के एक बूंद के प्यासे, उसको जेब में रखता हूँ, और 3 दफा अपने आप को पढ़ाता हूँ। जैसे इंग्लिश में कहा हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, शरीर को स्वस्थ करने के लिए 3 दफा खिलाते हैं, सवेरे खाया था, दिन में भी खाया, शाम को भी चाहिए। तो शरीर को भूख लगती है, आत्मा को भी भूख लगती है। तो शरीर को 3 दफा चाहिए तो आत्मा को भी 3 दफा चाहिए, ये दोनों सेपरेट है। तो आत्मा को सवेरे खाना खाते 2 हाथ दिया, ये हाथ से शरीर को खिलाता हूँ, ये हाथ मुझे आज क्या कहता, किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करना चाहिए, रख दिया, ये आत्मा के लिए भोजन है
जी,
शुद्ध विचार। दिन में खाना खाने बैठा, अलग टाइम नहीं चाहिए, उसी समय दोनों काम एक साथ, आप भी खाइए, शरीर को भी खिलाए। रात को खाना खाते ही, खाना खाते समय है, उस समय मुझे क्या पढ़ाया था, तीन दफा अगर आज का जो मैंने सवेरे श्रवण किया था वो अपने आप को पढ़ाते हो, तब का हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। जैसे स्कूल में भी देखो, बच्चे पढ़ के आते, हम घर में होमवर्क करते हैं, फिर किताबों में भी पढ़ते हैं, कहीं भी जाते हैं, मंदिर में गए सवेरे पूजा किया, कल सवेरे फिर करेंगे
जी,
सवेरे कोई भी पाठ किया फिर कब करेंगे, दूसरा दिन सारा
करेंगे।
दिन उससे और हमारे से कोई लिंक ही नहीं,
बिल्कुल बिल्कुल,
वो पढ़ा वहां का वहां,
बिल्कुल सही,
ये नहीं है। जो सवेरे आप एक ही महावाक्य पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब में पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, कुछ भी गीता पढ़िए आप, उसके अंदर क्या कहा, गीता में कहा किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये एक शब्द लिख के जेब में रखो, सारा दिन कम से कम तीन दफा, ज्यादा करो बहुत अच्छा, मिनिमम तीन दफा अपने आप को पढ़ाइए, क्या होगा हमारे कर्मों में भी वो आएगा,
शुद्धता आएगी। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे धर्म इकट्ठे एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं कि हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, विश्व है, वो सशक्त बने और समाज का जो ढांचा है वो सुधर जाए। इतनी सारी हमारे पास किताबें भी हैं, बहुत सारे जिनमें बहुत वैल्यूएबल प्रीचिंग्स हैं, बहुत महान बातें उसमें भी लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि समाज में पतन बहुत आ रहा है, गिरावट आती जा रही है। हम चाहे न्यूज़पेपर देख लें या फिर हम मीडिया जैसे इंटरनेट देख लें या फिर टीवी देख लें, तो खबरें जो है यही आती है कि समाज में और ज्यादा पतन हो रहा है, और ज्यादा पतन हो रहा है। एक तरफ से हम प्रयास भी बहुत कर रहे हैं, एक तरफ से पतन भी बहुत हो रहा है, ये कैसे फिर हम सुधार सकते हैं?
कारण है प्रयास जो हम कर रहे हैं
जी।
जैसे खेती में एक बीज बो लिया तो 100 दाना लगेंगे, ये एक विधान है, लेकिन बीज बोने की विधि है, ऐसे बीज छोड़ दो चिड़िया खा के जाएंगे
जी, जी, जी।
तो आज के मनुष्य को ये दोनों खाना, पॉइजन एंड अमृत दोनों मिल रहा है, तो दोनों खा रहे हैं, उसके कारण परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा।
बिल्कुल, जैसे आपने कहा, एक मेरे को अचानक ध्यान भी आया कि न्यूज़पेपर में कॉलम्स भी होते हैं, एक जगह हम आध्यात्मिकता का कॉलम होता है तो कहीं बैक पेज में एक सिनेमा का कॉलम भी
yes.
है।
तो ये दो आप देखो, दे दो आध्यात्मिक कॉलम का पहले दे दो, अच्छी बात दे दो, हम ये कहने तो समाज में कुछ गलत हो रहा दे दो, लेकिन पीछे साइड में दे दो, एक साथ दोनों नहीं, तो वो इसके साथ वो आंखें दो है, दोनों देखता है, लेकिन समाज को आज इतना गिराने का कारण मुझे लग रहा है हर जगह पर अश्लीलता का बहुत प्रचार हो रहा है
जी,
है ना। हाँ हो रहा, पहले भी होता था, नहीं से नहीं, लेकिन उसका प्रचार ज्यादा नहीं करो, बार बार टीवी में दिखा रहे हो, रैपिंग हो रहा है तो वो प्रिंट हो रहा है, तो आज बुद्धि के अंदर एक ताकत नहीं है, तो ये नेगेटिव ताकत ज्यादा मिल रही है, पॉजिटिव कम मिल रहा है, पॉजिटिव भी दिखाओ, देखो समाज के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें भी हो रही है
जी,
है ना, वो कम दे रहे हैं, हाँ नेगेटिव इसके कारण बढ़ रहा है, ऐसे मेरी समझ है, व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ कि मैं जब भी देखता हूँ, न्यूज़पेपर देख लो, टीवी देख लो, इंटरनेट खोलो, मोबाइल में देख लो, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट के
एड आ जाएगी,
है ना, तो वो एड की क्या जरूरत है, हाँ दे दो आप अच्छी चीज दे दो, ऐसे शरीर ऐसे रूप, बच्चे पता नहीं है, जिसको पता ही नहीं उसको आप उस तरफ आकर्षित कर रहे हो
जी, बिल्कुल, हम एक इन्फॉर्मेशन देखने बैठते हैं नेट पे और साथ में ही एक ऐसा पिक्चर आ जाएगा जो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है
देख कर, लेकिन अब संसार को भी ये जानना चाहिए, हम अपने दूसरों को नहीं, अपने बाल बच्चों को क्या फीड कर रहे हैं, दूसरा बाद में हमारा अगर परिवार है, हमारे बच्चे परिवार वाले भी वही न्यूज़पेपर देखेंगे, मैं ही प्रिंट कर रहा हूँ, तो मेरे परिवार वाले को हम क्या दिखा रहे हैं, अपने परिवार के बच्चों को हम क्या खाना खिला रहे हैं,
बिल्कुल बिल्कुल,
तो ये अपना परिवार, अपना देश, अपना समझ के अगर चलेगा, तब कहा वसुधैव कुटुंबकम्,
जब
ये अगर भावना हो,
हाँ बिल्कुल, मैं जब तक उन चीजों को अपना नहीं समझ के चलूंगा कि मेरा देश है, मेरा समाज है, जो भी मुझे चीज देनी है वो अच्छी ही देनी है, और कहीं ना कहीं मैं ऐसी चीज देता हूँ तो ये मेरी ही आंतरिक पर्सनालिटी को दर्शा रहा है कि मैं किस किस्म का हूँ,
ये अपनापन जब तक नहीं आया, ये अरे पैसे कमाना है इनको, दूसरों का है ये, हम प्रिंट किताब दूसरों के लिए कर रहे, नहीं मेरा परिवार
मेरा
भी
है,
देख रहा है,
बिल्कुल, बिल्कुल,
तो ये अगर समझ में आ जाए, एक उसके साथ साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए कि मैं जो कुछ कर्म कर रहा हूँ तो ये मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, इसका सुख दुख मुझे ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने अंदर बीज बो रहा हूँ, दूसरों के अंदर बाद में जब मैं कुछ लिखता हूँ, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ना, मैं लिखते समय ही मेरे अंदर बीज बो रहा हूँ
जी जी जी, सबसे पहले मैं खुद को ही सिखा रहा हूँ वो चीज
yes.
तो इसके अलावा भी क्या कोई टेक्निक और ऐसा मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं रादर देन मेडिटेशन?
हाँ। यहाँ भी कर्म कैसे करना सिखाते हैं।
यस, यस,
आप हाथों से काम कीजिए, घर में माताओं को कहते सब्जी काट लो, आप कपड़े धो लो, झाड़ू लगाओ, लेकिन मन क्या कर रहा है? मन के अंदर जो सवेरे आपने पढ़ाई पढ़ी उसका चिंतन
होना चाहिए।
तो उसको कहा कर्म योग, कर्म करते करते योग भगवान के साथ संबंध है। नहीं तो क्या हो रहा, कर्म कर रहे, कर्म करते मन के अंदर उस कर्म कॉन्शियस है या और किसी के कॉन्शियस में है, और किसी का चिंतन चल रहा है, तो वो दुख देता है। कर्मों में भी परफेक्शन नहीं, मन में भी शांति नहीं। तो यहाँ कर्मों में कुशलता चाहिए, कर्म करो, करते करते अगर शुभ विचार, तो जो सवेरे आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, गुरु ग्रंथ पढ़ा, कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, उसका चिंतन कीजिए।
जी, जी जी।
और खाना बनाओ, कपड़े धो लो, घर में सफाई करो, गाड़ी चलाओ, ये कर्म करते हुए आज मुझे कुरान में क्या कहा था, आज मुझे अल्लाह ने क्या पढ़ाया था, आज मुझे यीशु ने क्या पढ़ाया था, तो वो अपने आप के अंदर अगर मन में चलता है तो आपके कर्म शुद्ध होंगे।
बिल्कुल, ये कितना इजी है ये करना। और लोगों की धारणाएं ये है इस चीज को लेकर के कि वो ये सोचते हैं कि हमें संन्यास लेना पड़ेगा, ये सब चीजें सीखने के लिए हमें परिवार से अलग होना पड़ेगा, कट जाना पड़ेगा, और हमें एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी जहाँ मैं अपने परिवार को तो देखभाल नहीं, नहीं
आप
कर पाऊंगा।
संसार में रहिए, गृहस्थ में रहिए, एक इंडस्ट्री चलाते हो आप, 10 इंडस्ट्री चलाइए
जी।
आप कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, गाड़ी चलाते हो, हर कर्म करो। घर में आपके पास 24 घंटा है, संसार बनाओ, घर चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन सवेरे सवेरे 5 मिनट बस, ज्यादा नहीं चाहिए। ईट लेस डाइजेस्ट मोर, भगवान के एक ही बूंद के प्यासे, एक महावाक्य ले लीजिए आप, 30 दिन में 30 महावाक्य आपके जीवन में आएंगे।
जी,
आपने एक किताब पढ़ा और जीवन में कुछ भी नहीं आया।
जी जी बिल्कुल, उसका
तो पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे स्वभाव संस्कार चेंज
करने के लिए,
है ना। तो मुझे, मैं गुस्सा करता था, जब मैंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया तो समझ में आया गुस्सा करने से नुकसान किसको है,
मुझे,
मेरा ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मेरे मन में गलत विचार है, वो तो ऐसे के ऐसे ही है। हमने गुस्सा करने से वो और दुश्मन बनता है, आज चुप रहेगा कल और दुश्मन बन के आए, कल नहीं ये शरीर छोड़ के जाएगा, दूसरे जन्म में भी आत्मा वही है, शरीर छोड़ दे, कपड़े निकाल दे, आत्मा तो वही है, तो दोबारा दुश्मन बन के आता है
जी।
तो हमने गुस्सा करने से हम अपनी दुश्मनी बढ़ाते हैं, और अपना भी नुकसान, दूसरों का भी नुकसान, अपने आप को पढ़ाते हैं। मैं औरों को रोक नहीं सकता, अपने को बचा सकता हूं।
बिल्कुल,
जैसे देखो बहुत तेज बरसात आती है, हम बरसात को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन छाता लेके जा सकते हैं, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ये गुस्सा करता है इसको चेंज करना चाहिए, नहीं, अपने को बचाना चाहिए, उसके गुस्से से मेरे ऊपर प्रभाव ना हो, मेरी वाणी, मेरी चलन चेंज ना हो, तो अपने को बचाने का अधिकार है
जी। मतलब मुझे एक बात भी याद आ रही, गीता में भी ये लिखा हुआ है कि मनुष्य अपना ही मित्र होता है और अपना ही शत्रु होता है। बिल्कुल, आपने ये श्लोक अपने आप में बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर देता है। यदि शायद हम यही एक स्लोगन भी अपनी लाइफ में उतार लें तो शायद हमारा वो स्वभाव, संस्कार, गुस्सा ये सब हम नहीं करेंगे।
अभी क्या ये हम स्लोगन बहुत लोगों ने सुना, हम पढ़ते हैं, वी रीड एंड वी कोट, हम बताते भी है, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं कि मैं अपना दुश्मन कैसे बन सकता हूँ। ये बैठ करके जब समय मिलता है, ट्रेवलिंग कर रहे हो, अपने आप को पूछ लो, बात करो, टॉक टू यू, बी इंट्रोस्पेक्शन का, कि मैं अपना दुश्मन कैसे बन सकता हूँ, मैं अपना मित्र कैसे हो। तो अपने आप से जब बात करेंगे आप, तब ये सुलझेगा, समझ में आएगा। हम इतने कहा इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ।
यस यस, अभी दुनिया में ये भी कहते हैं कि आदमी दूसरों का तो जज बन जाता है और
स्वयं का
वकील बन जाता है खुद का, क्योंकि वकील मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है ना, अपने क्लाइंट को, तो इसलिए हमें अपना जज बनना चाहिए। बिल्कुल, आपने आज ये इतनी अच्छी डिस्कशन हमारी रही है, और कैसे आपने वो टिप्स बताए हैं, इजी टिप्स, कि नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में भी हम इन चीजों को कैसे उतार सकते हैं। और सुबह का जो टाइम आपने बताया, सुबह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा पूरा दिन जो है वो सुबह पर आधारित रहता है। मुझे उम्मीद है आज का भी एपिसोड हमारे दर्शक देखेंगे, उनको बहुत इजी लगा होगा, बहुत सारे उनके जो जहन में प्रश्न आते हैं, मुझे उम्मीद है कि उनका भी जवाब उनको मिला होगा। तो इस चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया।
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का वातावरण कुछ और होता है, यदि हम मार्केट में जाते हैं तो उसका वातावरण कुछ और होता है, क्योंकि वातावरण बनाने वाले हम लोग ही हैं। क्योंकि मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमारी भावनाएं बड़ी शुद्ध होती हैं कि हम जा रहे हैं शांति को प्राप्त करने के लिए, तो कैसे हम अपने विचारों से एक ऐसा माहौल बना सकते हैं। और इतनी अच्छी बात भाई साहब ने आज हमको बताई है कि कर्म योग, न केवल हमें मेडिटेशन करना है, और कर्म योग यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो कर्म की कुशलता हमारे जीवन में आ जाएगी। ऐसी ही बातों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।